ॐ नमः शिशेभ्यः तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। मंगलाचरण के पश्चात आप छठी ढाल में आ जाएंगी। श्लोक नंबर 12 पर 11 श्लोक तक आपने महामुनियों की चर्या के बारे में जाना कि किस प्रकार वे 28 मूल गुणों में तल्लीन रहते हैं, उनका पालन करते हैं और परिसह उपसर्गों को भी सहन करते हैं, द्वादश अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं और धीरे धीरे करके छपक श्रेणी पर आरोहण करके शुक्ल ध्यान में लीन होकर स्वरूपाचरण चारित्र को प्राप्त कर लेते हैं और तपस्या करते करते चार घातिया कर्मों का नाश करके अरहंत केवली अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे देखिएगा 12वें नंबर के श्लोक में सिद्ध का स्वरूप। पुनि घाति शेष अगाति विधि चिन्ह मानी अष्टम भुव से वसु कर्म बिन से सुगुण वसु सम्यक्त आदिक सबल से संसार हारे अपारे पारा वारे तरी तीरही गए अविकार अकल अरूप शुचि चिद्रूप अविनाशी भये। एकदम समय सार की स्थिति में हम सब आ गए हैं कि जब ये प्राणी अपने आत्म तत्व को प्राप्त करता है, कब? जब मुनि अवस्था को धारण करते हैं, तपस्या करते हैं, शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न समझ लेते हैं, आत्म तत्व में तन्मय हो जाते हैं और केवल ज्ञानी बनकर गंध कुटिया समो शरण में विराजमान होते हैं। पुनि यानी उसके बाद पुनः घाती से ही सघाती घातिया कर्मों का तो नाश कर ही चुके हैं, अब जो शेष बचे अघातिया कर्म हैं कौन से? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। इन चार घातिया कर्मों को भी वे क्षण मात्र में नष्ट करते हैं। कितनी देर में? आ ई उ ऋ। केवल 5 अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, उस अंतर मुहूर्त समय में अघातिया कर्मों का नाश करके क्षण मात्र में मात्र में वे कहाँ चले जाते हैं? अष्टम भुव से। 8वीं प्रतिमा कौन सी है? सिद्ध शिला। सिद्ध शिला पर सीधे चले जाते हैं और वहां जाकर बसे माने बस जाते हैं, फिर वहां निवास करने लगते हैं। अनंत काल के लिए वही उनका निवास स्थान बन जाता है। वहां जाने के बाद कभी भी वे संसार में वापस नहीं आते। वसु कर्म विन से सुगुण वसु। 8 कर्म है और 8 गुण है, यानी 8 कर्मों का जब नाश करते हैं तो 8 गुणों की प्राप्ति हो जाती है। पहला ज्ञानावरण कर्म है तो ज्ञानावरणी कर्म के नाश से अनंत ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरणी कर्म के नाश से अनंत दर्शन गुण प्रकट होता है। वेदनीय कर्म के नाश से अव्यवाद गुण प्रकट होता है। मोहनी कर्म के नाश से क्षायिक सम्यक्त गुण प्रकट होता है। आयु कर्म के नाश से अवगाहन गुण प्रकट होता है। नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। गोत्र कर्म के नाश से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। और अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर्य अनंत बल प्रकट हो जाता है। तो वसु कर्म विन से सुगुण वसु, वसु माने आठ, जब आठ कर्म नष्ट होते हैं तो उसके बदले में आठ गुण प्रकट हो जाते हैं। ये सिद्धों के गुण होते हैं। जब कभी पंच परमेष्टि का विधान आप करते होंगे ना, तो उसमें अरहंत भगवान के 46 गुणों के अर्घ चढ़ाते हैं, सिद्ध भगवान के 8 गुणों के अर्घ चढ़ाते हैं, आचार्यों के 36 मूल गुण के अर्घ चढ़ाते हैं, उपाध्याय के 25 गुण के और साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण के अर्घ चढ़ाते हैं। तो सबसे कम गुण किनके हैं गिनती करें तो सिद्धों के, तो सबसे कम गुणी हुए ना? नहीं, सबसे कम गुणी इसलिए हुए उनकी कि जब आठ कर्म ही आठ हैं तो आठ कर्म के नाश से ऐसे आठ गुण प्रकट कर लिए कि उनके अंदर अब सारे गुण समाविष्ट हो गए। आठ गुणों के माध्यम से उनके अंदर अनंत गुण समन्वित हो गए। तब कहा सम्यक तो अधिक सब लसे, उनके साथ लस जाते हैं, एकदम चिपट जाते हैं, उनके पास में आ जाते हैं, आठों गुण से भी समन्वित हो जाते हैं। तब संसार खार अपार, संसार रूपी खार समुद्र में, यानी
खारे
खारे समुद्र के अंदर, संसार को एक समुद्र की उपमादी है, तो संसार रूपी दुखदाई यथा खारे खारे समुद्र से पार हो जाते हैं और वहां से तर करके तरई तीरई भये, उसके तीर लग जाते हैं, तो समुद्र से ही तीर जाते हैं। फिर अविकार अकल अरूप शुचि चिद्रूप अविनाशी भय, माने पूरा सार निकाल के आपको बता दिया
हाँ
वे आत्म तत्व में लीन हो गए तो
हाँ
अविकार संपूर्ण रूप से सारे विकारी भाव उनके नष्ट हुए। विकारी भाव तो संसारी जीवों में आते हैं, हम सब संसारी हैं क्योंकि जीव दो ही तरह के होते हैं, संसारी और मुक्त। मुक्त जीवों में कोई भेद नहीं और संसारी जीवों के ही सारे भेद हैं। 84 लाख योनियां जो हैं संसारी जीवों की हैं, चारों गतियां जो हैं संसारी की हैं, निगोद अवस्था क्या है संसार में है। तो संसार अपार है और उस अपार संसार को प्राप्त करके जाके एकदम तीन लोक के टॉवर पे बैठ जाते हैं। सिद्धशिला क्या है? टॉवर है, जैसे अयोध्या में टावर पे खड़े होकर के तमाम गनमैन जो है वॉचिंग करते हैं कि यहाँ कोई अराजक तत्व तो नहीं है, और अगर होता है तो उसे नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान अब पहुंच गए सिद्धशिला पर, वहां से वॉचिंग कर रहे हैं संसारी जीवों के लिए। क्या जैसे हम पहले संसार में थे भटक रहे थे, ऐसे सबको जान रहे हैं देख रहे हैं। बस इतना है कि वो वहां से कुछ कर नहीं सकते, ना करने की भावना होती है क्योंकि इतना अनंत सुख उनको मिल गया कि आप किसी तरफ भी की उनकी दृष्टि नहीं जाती, केवल ज्ञाता और दृष्टा बने रहते हैं, जन्म मरण की बाधा से रहित हो जाते हैं। अकल, कल माने होता शरीर, अकल माने शरीर से रहित हो गए, अदेह हो गए, अमूर्तिक हो गए, अरूप हो गए, और शुचि माने परम पावन पवित्र अवस्था को प्राप्त कर लिया। चित्रूप, केवल चित्रूप, चित माने चैतन्य स्वरूप, चैतन्य के स्वरूप में बस अविनाशी हो गए, उनका कभी भी नाश नहीं होगा। ये सब विशेषण है, एक शब्द हम कह ले नमो सिद्धानम, बस उसके अंदर सब कुछ समाविष्ट हो गया। सिद्ध कैसे हैं? अरूपी हैं। सिद्ध कैसे हैं? अनंत सुख से समन्वित हैं। सिद्ध कैसे हैं? अविकारी हैं। सिद्ध कैसे हैं? शरीर से रहित, जितने भी विशेषण हैं सब जाके सिद्धों में समाविष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी सिद्ध पर्याय को प्राप्त करके वे अविनाशी सुख में लीन हो जाती हैं। तो ये उपसंहार करते हुए सारे छह डाला का सार दौलत राम जी बता रहे हैं। आगे चलते हैं 13वें श्लोक में। निज माही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित थे, रही हैं अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। धनी धान्य है जे जीव नरिबा पाए ये कारज किया। तिन्हीं अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। कई बार प्रश्न होता है क्या कि वे कितने दिन रहेंगे सिद्धि शिला पर, कितना सुख भोगेंगे, कैसा सुख है वहां। एक साधारण संसारी प्राणी से पूछा जाए, कहा जाए कि सिद्धि शिला से कभी वापिस नहीं आएंगे, तो आप सिद्धि शिला जाना चाहेंगे, तो कई बार लोग तुरंत कह दें नहीं हम तो नहीं जाएंगे, वहां बच्चे नहीं मिलेंगे, वहां खाने पीने की सामग्री नहीं मिलेगी, वहां हम करेंगे क्या, वहां करेंगे क्या, खाली रहेंगे। अरे नहीं, वहां तो इतने भरे हैं, इतने भरे हैं कि उस सुख का उपभोग करते करते अनंत काल तक उनका कहीं जाने का मन ही नहीं करता। और आप कल्पना कर लो कि जिसके घर के अंदर सारे सुख हैं तो उसका कहीं जाने का मन नहीं करता, थोड़े क्षणिक सुखों के लिए भी इतनी कल्पना कर ले। और जहां शाश्वत सुख है, जहां अनंत सुख है, कोई बीमारी नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई सुख की कमी नहीं, कोई वहां दुख नहीं, तो अनंत काल तक भी सुख होंगे। ये दिगंबर जैन धर्म की मान्यता, दिगंबर जैन सिद्धांत, जैन शासन की मान्यता है कि हर व्यक्ति में भगवान बनने की क्षमता है, और जब भगवान बन जाता है तो पुनः वापिस नहीं आता। जैसे कुछ लोग मानते हैं ना कि भगवान फिर धरती पर अवतार लेता है, ऐसा अवतार इस तरह का नहीं माना कि मोक्ष जाने के बाद वो अवतार ले, ऐसा नहीं माना। भगवान ऋषभ देव के भी 10 अवतार माने हैं, लेकिन वो अवतार कब तक हैं, महाबल के अवतार से या राजा जयवर्मा के अवतार से लेकर ऋषभ देव बनने तक उनके महापुरुष की अवस्था में अवतार माने, लेकिन जब मोक्ष चले गए फिर उनका अवतार माने नीचे की ओर अवतरण नहीं होगा, वो ऊर्ध्वारोहण कर चुके। देखो अवतरण नीचे की ओर जाता है और ऊर्ध्वारोहण कर चुके, तो ऊर्ध्वारोहण की सबसे चरम शिला है सिद्ध शिला, जिसके बाद में उसके आगे जा ही नहीं सकते, ऐसे सुख में निमग्न है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवान कितने दिन वो भगवान वहां रहेंगे, कहते रही है अनंतानंत काल, चिंता मत करो अनंतानंत काल तक वो वहां रहेंगे। निज माही लोक कह लो, वे अपने में अंदर, अपने ही में, बस अपने में ही लीन है। लोक और अलोक के समस्त गुण और पर्यायों को वो देख रहे हैं, उनके ज्ञान में सब प्रतिबिंबित हो रहे हैं। जैसे दर्पण में देखो तो अपना चेहरा सब कुछ दिख जाता है, कहाँ आपके तिल है, कहाँ कालिमा लगी है, कैसे कितना साफ है, क्या क्या चीजें हैं, जितना दर्पण के अंदर दिखा सकोगे वो तुरंत झलका देता है। ऐसे भगवान के केवल ज्ञान को दर्पण की उपमा दी है कि उसके अंदर तीनों लोकों की, अलोक की समस्त गुण पर्याय प्रतिबिंबित हो जाते हैं, झलक जाते हैं। और उसके बाद फिर प्रश्न का उत्तर दिया कि अब आप समझ लो कि वे भगवान कभी नहीं आएंगे नीचे, अनंतानंत काल तक के लिए वे यथा तथा शिव परिणमे, वैसे जैसे मोक्ष को गए हैं बस वैसे ही वहां पर हमेशा रहेंगे। अब देखो संसारी प्राणी अज्ञानी होता है। आदि पुराण के अंदर वर्णन आया कि जब भगवान ऋषभ देव मोक्ष चले गए, कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, भरत बड़े दुखी हो गए। भगवान ने 14 दिन का योग निरोध किया और शुक्ला पूर्णिमा को अपना योग निरोध कर दिया, समुद्र विघटित हो गया, और माँ कृष्णा चतुर्दशी के दिन मोक्ष चले गए। अब भरत महाराज जो थे अयोध्या से जाकर भगवान की अखंड पूजा कर रहे थे, इंद्र देवता सबके द्वारा जान रहे थे कि अब भगवान हम सबके बीच से जाने वाले हैं। जब भगवान मोक्ष चले गए तो भरत रोने लगे, बहुत दुखी हो गए। उस समय जो समोसरण के प्रमुख गणधर थे वृषभ सेन गणधर, ऋषभ देव भगवान के ही पुत्र थे, मना पर ये ज्ञानी थे। वे अवधिक ज्ञानी छाई सम्यक दृष्टि भरत को समझाते हैं। भरत दुखी मत हो, आपने भगवान की खूब भक्ति की है और अब हमें भगवान के आदर्शों पर चलना है। क्योंकि व्यक्ति दुखी होता है, चाहे कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, जब अपने से किसी का वियोग होता है तो दुख होता है। लेकिन उन्होंने भरत को समझाया कि देखो, जो बार बार मरण होता है उसको कहते हैं मौत, और जो एक बार होता है और फिर मरण नहीं होता उसको कहते हैं मोक्ष। तो मौत और मोक्ष दोनों में कितना अंतर है, बहुत अंतर है ना। बार बार मरण करे तो मौत, और जो एक बार मरण करके वापिस कभी मरण नहीं करे तो मोक्ष है। ऐसे मोक्ष को हमारे पिता ने प्राप्त किया है, समझाया, भरत के दुख को दूर किया और मोक्ष की स्थिति को जाना। तब वो भी उसमें तल्लीन हो गए, अपनी आत्मा का ध्यान करने लग गए, और यही अयोध्या नगरी है ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म देने वाली। जब उनको भी बोध आया तब उन्होंने भी दीक्षा ली, और इतना वैराग्य उनका दृढ़ हो गया था कि बस केश लोच करते करते उनको केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए। जो भरत अपने पिता के मोक्ष जाने के बाद रो रहे थे, उन्होंने भी फिर मोक्ष की सही स्थिति को जाना और फिर अपने अंदर निमग्न हो गए तो पुनः मोक्ष चले गए। जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, जो राज्य कार्य में सूरवीर थे, शौर्यवान थे, पराक्रमी थे, उन्होंने पराक्रम के साथ दीक्षा लेकर के और अपने मोक्ष को साकार किया, मार्ग पर चले तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे लोगों के कहा धनी धन्य है, धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यही कारज किया। कितनी श्रद्धा टपक रही है, वे बहुत धन्य है, महान सौभाग्यशाली हैं कि जिन्होंने नर भव पा करके ये कारज किया है। अब बात देखो आप, 140 करोड़ की जनसंख्या है, पूरे देश की जनसंख्या कितनी है 140 करोड़, और उसमें से कितने लोग मोक्ष मार्ग में लगे हैं, कितने लोग, पॉइंट माइनस है ही नहीं कुछ। 140 करोड़ में अगर केवल 1700 के लगभग साधु अपने मोक्ष मार्ग में लगे हैं, और समझ ले चलो अनेक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी मोक्ष मार्ग में लगे हैं, अनेक गृहस्थ व्रती भी मोक्ष मार्ग में लगे हैं, तो भी हमारी संख्या बिल्कुल नगण्य आएगी। ऐसे लोगों को सौभाग्यशाली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सौभाग्यशाली नहीं, स्वर्णिम सौभाग्य से युक्त हैं जिन्होंने नर भव पा करके ये कारज किया। ये कारज कौन सा कारज? संसार का कारज, मोक्ष का कारज किया, मोक्ष का कार्य संपन्न किया। तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। उन्हीं लोगों ने, जिन महापुरुषों ने मनुष्य भव पा करके ये कार्य किया है, यानी मुनि धर्म धारण करके मोक्ष को प्राप्त किया है, उनको ही अनादिकाल से चले आ रहे 5 प्रकार के संसार भ्रमण, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव, ये पंच परिवर्तन है। अरे इनकी कथा सुनने लग जाओगे आपका रोम रोम सिहर जाएगा। कितनी बार नरक गए, कभी जघन्य आयु होगी, कभी मध्यम आयु होगी, कभी उत्कृष्ट आयु होगी। कितनी बार तिरियंज में गए, कभी साग भाजी हो गए, कभी मेढक हो गए, कभी ततैया हो गए, कभी बिच्छू हो गए, कभी सांप हो गए। एक प्राणी को देख करके डर लगता है, एक छिपकली को देख कर बच्ची डर गई, और छिपकली से बड़ा डर लगता है। अरे सोचो, अनंत बार हमने ऐसी छिपकली बिच्छू ततैया भौरे तिरंच योनि में जाकर जन्म लिया। तो आप कह रहे हैं कि इन ऐसे लोग ही अनादिकाल से चले आ रहे 5 प्रकार के भ्रमण पंच परिवर्तन रूप संसार को तज करके, माने संसार से छूट करके परम सुख को प्राप्त किया है। आप पूछो कि उन लोगों ने प्राप्त कर लिया, हमें उनसे क्या मतलब है? क्यों साहब, हमें उनसे क्या मतलब? प्राप्त कर लिया कर लिया, अब हम क्या करें? हम ये करें कि जिन्होंने प्राप्त किया है हम हमेशा उनके चरण कमलों के अनुरागी रहें। और कहते हैं ना कि तावत निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, तिष्ठत जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। मेरे हृदय में आप तब तक विराजमान हो जाएं जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए। अरे भैया, निर्वाण की प्राप्ति होगी तो आपके हृदय में कहाँ भगवान बसेंगे, फिर आपको लोग अपने हृदय में बसाने लगेंगे, समझे
अरे
ना। जब हम भगवान बन जाएंगे तो हमें भी लोग अपने हृदय में बसाने लग जाएंगे। अभी मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं तो ही कहते हो हम ज्ञानमती माता को अपने दिल में बसा के रखते हैं, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग है। तो एक मोक्ष मार्गी को हृदय में बसा करके और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे लोगों ने जिनने संसार भ्रमण को समाप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया है, उनके चरणों के अनुरागी हम सब बने रहें। अब एक श्लोक और आगे। मुख्योपचारे दुभे दियो बड़े भागी रत्न त्रय धरें, अरु धरेंगे ते शिव लहें तिन सुयस जल जग मल हरे। इमी जानी आलस हानि सास ठानी यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गए तब लो जटी निज हित करो। अंत में जैसे दूध को औंट औंट करके खोया बना करके उसका तत्व निकाल दिया जाता है, ऐसे ही दौलत राम जी कहते हैं अब तुम सार रूप में जानो कि रत्न त्रय के दो भेद हैं। किसके रत्न त्रय के दो भेद हैं, व्यवहार रत्न त्रय और निश्चय रत्न त्रय, मुख्य और उपचार। यानी निश्चय रत्न त्रय को कहते हैं मुख्य रत्न त्रय और उपचार रत्न त्रय कहते हैं व्यवहार रत्न त्रय को। तो मुख्य और उपचार इन दो भेदों से जो रत्न त्रय है उसको बड़भागी लोग, बड़े सौभाग्यशाली लोग प्राप्त करते हैं, धारण करते हैं। क्योंकि पहले तो व्यवहार रत्न त्रय पाएंगे, पहले पिच्छी मिलेगी, कमंडल मिलेंगे और शास्त्र मिलेगा, आपको 28 मूल गुण मिलेंगे, उसके बाद जा करके तपस्या करके आत्मा में लीन होके निश्चय रत्न त्रय की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं ऐसे निश्चय और व्यवहार रत्न त्रय को जिन्होंने धारण किया और आगे भी ऐसे ही धारण करेंगे और वे ही शिव लहें मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सुयस जल जग मल हरे, वे ही लोग अपनी कीर्ति को प्रसारित करके आत्मा की कीर्ति को प्राप्त करके सुयस रूपी जल को प्राप्त करके जग मल हरे, संसार के मैल को नष्ट कर देते हैं। भी जब आत्मा पवित्र होती है, मस्तिष्क शुद्ध होता है तो सारा मैल नष्ट हो जाता है। या यूं समझिए, जब मैल नष्ट हो जाता है तो अपना मस्तिष्क और मन और आत्मा सब कुछ पवित्र हो जाते हैं। इमी जानी, ऐसा जान करके आलस हानि, आलस को छोड़ो, सो रहे हो तो जागो। और सोने का अगर कोई नाटक कर रहे हैं तो जाग जाओ मैं आत्माओं, साहस ठानी साहस रखो, ये मत सोचो कि हम इसको नहीं पालन कर सकते, अपना धैर्य मत छोड़ो, साहस ठानी ये सिख आदरो, ऐसी शिक्षा का आदर करो। सिख माने शिक्षा। जब लो न रोग जरा गए, देखो कितनी अच्छी बात कही कि शरीर में जब तक रोग, जब तक जरा माने बुढ़ापा न आने पाए, तब तक झटी थी माने शीघ्रता से निज हित करो, अपना हित कर लो। कोई बीमार है उससे कुछ कहो तो कहेंगे माता जी अब चला तो जाता नहीं, शरीर काम नहीं करता, इंद्रिया साथ नहीं देती, तो कैसे करें हम, चाहते हुए भी वे बेचारे नहीं कर पाते। इसलिए आपको मौका दिया गया कि भव्य प्राणी आप बचपन ना देखो, युवावस्था ना देखो, जब आत्मा में भाव जग जाए उसी समय अपने कल्याण के मार्ग पर लग जाओ, अपने हित में तत्पर हो जाओ। परहित को तो करते करते अनादि काल निकल गया, लेकिन निज हित में व्यक्ति नहीं लग पाया, इसलिए बार बार संबोधन करते हैं। मैंने एक पंक्ति में लिखा, जनवाणी भव भव में सुनी, जिन वाणी सुनकर नागुनी। ज्ञानमती माता जी की वाणी सुन लो, वाणी सुन लो, जिन वाणी सुन लो। जनवाणी माने जन जन की वाणी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, ये तो हमने सुना, लेकिन जिन वाणी नहीं सुनी। जिन वाणी माने जिनेंद्र भगवान की वाणी, जो हितकारी वाणी थी, और उसको सुन भी लिया तो पल्ला झटक के चले गए। ये जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। और कुर्ता साड़ी झाड़ करके चले गए। हे माता, तो वस्तु तुभ्यमेव समर्पितम, आपकी चीज को हम आपके पास ही छोड़ के जा रहे हैं, मंदिर के बाहर नहीं ले जाएंगे। इसीलिए तो घर जा करके फिर वही शुरू हो जाता है। तो भाई, एक बहू ने सासू जी से पूछा, आप गंगा स्नान करने गई थी तो क्या हुआ, यहाँ आते तो फिर शुरू? बोले, रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। यहाँ जैसा मौका है वैसा करेंगे? नहीं, हमें तो इनकी वाणी को ध्यान देना है कि जब तक शरीर के अंदर रोग नहीं लगा है, तब तक अपनी आत्मा का हित करने में हम सबको दत्तचित्त हो जाना चाहिए। यही स्वाध्याय का सार समझना। एक श्लोक केवल बचा है, उसको कल करके और परसों सब लोग आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाना। जवानी के ज्ञान ते सूझे लो।